नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप तादुयाजो से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। भारतीय जनता पार्टी के सांसद ओम बिरला एनडीए के उम्मीदवार होंगे, जबकि विपक्ष इंडियन गठबंधन ने इस पद के लिए कांग्रेस के सांसद के सुरेश को अपना उम्मीदवार बनाया है। 18वीं लोकसभा का दूसरा दिन नवनिर्वाचित सांसदों के सदन के सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण के साथ शुरू हुआ। केंद्रीय उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने गन्ने के टिकाऊ और विविध उत्पादन के लिए वैश्विक सहयोग का आह्वान किया है। विकिलीक्स के संस्थापक जूलियन असांजे को अमरीकी अधिकारियों के साथ समझौते के बाद ब्रिटेन की जेल से रिहा कर दिया गया है। आईसीसी 2020 विश्व कप में भारत का मुकाबला बृहस्पतिवार को सेमीफाइनल में गयाना में इंग्लैंड से होगा। अब समाचार विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ सांसद ओम बिरला राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के उम्मीदवार होंगे, जबकि विपक्ष इंडिया गठबंधन ने इस पद के लिए कांग्रेस के सांसद के सुरेश को अपना उम्मीदवार बनाया है। दोनों उम्मीदवारों ने अध्यक्ष पद के लिए आज अपना नामांकन भरा। अध्यक्ष का चुनाव कल होगा। इससे पहले सरकार और विपक्ष इस पद के लिए आम सहमति तक पहुंचने में असफल रहे हैं। संसद के बाहर मीडिया से बातचीत में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, अमित शाह और जगत प्रकाश नड्डा ने इस मुद्दे पर कांग्रेस के नेता केसी वेणुगोपाल और डीएमके नेता टीआर बालू के साथ बैठक की। विपक्ष के नेता श्री बिरला की उम्मीदवारी पर समर्थन देने से पहले उपाध्यक्ष के नाम की घोषणा करने पर जोर दे रहे थे। श्री गोयल ने कहा कि उन्हें सूचित कर दिया गया है कि उपाध्यक्ष का मुद्दा इसके चुनाव के समय निपटाया जाएगा। उन्होंने कहा कि विपक्ष शर्तें रख रहा है जिससे सरकार खारिज कर चुकी है। इससे पहले कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी ने कहा कि विपक्ष अध्यक्ष उम्मीदवार को अपना समर्थन देने के लिए तैयार है, लेकिन उपाध्यक्ष पद के लिए विपक्षी पार्टी का उम्मीदवार होना चाहिए। संसद परिसर में आज मीडिया को जानकारी देते हुए श्री गांधी ने कहा कि राजनाथ सिंह ने मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात करके उन्हें अध्यक्ष को अपना समर्थन देने को कहा। श्री गांधी ने कहा कि श्री खड़गे ने उन्हें बताया कि विपक्ष राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के अध्यक्ष उम्मीदवार को अपना समर्थन देने के लिए तैयार है, लेकिन परंपरा के अनुसार उपाध्यक्ष का पद विपक्ष को दिया जाना चाहिए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव स्वाधीनता के समय से बिना किसी प्रतिस्पर्धा का होता है, लेकिन यह पहली बार है जब इस पद के लिए प्रतिस्पर्धा हो रही है। 18वीं लोकसभा का दूसरा दिन नवनिर्वाचित सांसदों के सदन के सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण के साथ शुरू हुआ। सदन के दूसरे दिन कांग्रेस के एडवोकेट गोपाल कागरा पदवी ने हिंदी में शपथ ग्रहण किया, जबकि अन्य पार्टी के सांसद बच्छाव शोभा ने मराठी में शपथ ली। भारतीय जनता पार्टी के सांसद स्मिता उदय वाघ ने मराठी में शपथ ग्रहण किया। अन्य पार्टी के सांसद अनूप संजय धोत्रे, कांग्रेस के बलवंत वासवंत वनखड़े, एनसीपी शरद पवार ने अमर शरदराव काले, कांग्रेस के श्याम कुमार दौलत बाड़वे, शिवसेना के डॉ श्रीकांत एकनाथ शिंदे, शिवसेना के नरेश गणपत महस्की और अन्य सांसदों को भी शपथ दिलाई गई। शपथ ग्रहण कार्यक्रम जारी है। वित्त मंत्री सीतारमन ने आज आगामी आम बजट का सुझाव लेने के लिए नई दिल्ली में व्यापार और सेवा क्षेत्र के प्रतिनिधियों के साथ 60वीं बजट पूर्व परामर्श बैठक की अध्यक्षता की। बजट पूर्व परामर्श बैठक में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी, मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन, वित्त सचिव टीवी सोमनाथन, वाई विभाग के सचिव, आर्थिक कार्य विभाग के सचिव और वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय ने भागीदारी की। कल सुश्री सीतारमन ने व्यापार और श्रमिक संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ बजट पूर्व बैठक की। पिछले सप्ताह वित्त मंत्री ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्रियों के साथ बजट पूर्व बैठक की। उन्होंने किसान संगठनों और कृषि अर्थशास्त्रियों के प्रतिनिधियों के साथ भी बातचीत की। इससे पहले श्रीमती सीतारमन ने वित्तीय और पूंजी बाजार क्षेत्र के अग्रणी विशेषज्ञों, उद्योगपतियों तथा संगठनों और अग्रणी अर्थशास्त्रियों के साथ भी बैठक की। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के माध्यम से परीक्षाओं के पारदर्शी, सुचारू और निष्पक्ष संचालन को सुनिश्चित करने के लिए शिक्षा मंत्रालय द्वारा गठित विशेषज्ञों की उच्च स्तरीय समिति की कल पहली बैठक हुई। समिति के अध्यक्ष डॉ के राधाकृष्णन ने नई दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए कहा कि समिति की प्राथमिकता छात्रों और अभिभावकों की चिंताओं और सुझावों को जानना है, जिसके लिए उनसे बातचीत की जाएगी। उन्होंने कहा कि समिति छात्रों की कठिनाइयों और तनाव को कम करने के उद्देश्य से एक मजबूत प्रणाली विकसित करने पर भी विचार कर रही है। सरकार ने इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉ के राधाकृष्णन की अध्यक्षता में विशेषज्ञों के साथ सदस्य समिति का गठन किया है। समिति को दक्षता बढ़ाना, डेटा सुरक्षा प्रोटोकॉल में सुधार करने और एजेंसी की संरचना तथा कार्य प्रणाली की समीक्षा करने के लिए एनटीए की परीक्षा प्रक्रिया में सुधारों की सिफारिश करने का काम सौंपा गया है। समिति मौजूदा प्रक्रिया का मूल्यांकन, सुधार के सुझाव और एनटीए में स्पष्ट भूमिका तथा जिम्मेदारियों को परिभाषित करेगी। समिति मौजूदा शिकायत निवारण तंत्र का आकलन कर रहे उसे मजबूत बनाने का प्रस्ताव करेगी। समिति 2 महीने में शिक्षा मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। केंद्रीय उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने गन्ने की टिकाऊ और विविध उत्पादन के लिए वैश्विक सहयोग का आह्वान किया है। दिल्ली में 64वीं अंतर्राष्ट्रीय गन्ना संगठन आईएसओ परिषद की बैठक के दौरान एक कार्यशाला को संबोधित करते हुए श्री जोशी ने कहा कि किसी योजना का कार्यान्वयन करते हुए उपभोक्ता, किसानों और उद्योग के हितों में संतुलन स्थापित करना आवश्यक है। उन्होंने कार्यशाला के सदस्यों को एकजुट होने का आग्रह किया। उन्होंने कम जल के प्रयोग और अधिकतम उपयोग वाली फसलों का उत्पादन करने का आग्रह किया। श्री जोशी ने कहा कि स्वच्छ ईंधन उत्पादित करने की क्षमता के कारण गन्ने का मूल्य एक नई ऊंचाई तक पहुंच चुका है। मीडिया से बातचीत में श्री जोशी ने आशा व्यक्त की कि भारत अंतर्राष्ट्रीय गन्ना संगठन की बैठक की मेजबानी 12 वर्षों के बाद कर रहा है। इस बैठक में किसानों के कल्याण, उपभोक्ता कल्याण और जल संरक्षण पर नए विचारों पर मंथन किया जाएगा। 64वीं आईएसओ की बैठक की मेजबानी नई दिल्ली में की जा रही है। इस 3 दिवसीय बैठक में 30 से अधिक देश और कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधि गन्ना और जैव ईंधन क्षेत्र के महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार विमर्श करने के लिए भागीदारी कर रहे हैं। विकिलीक्स के संस्थापक जूलियन असांजे को अमेरिकी अधिकारियों के साथ समझौते के बाद ब्रिटेन की जेल से रिहा कर दिया गया है। इसमें असांजे को राष्ट्रीय रक्षा जानकारी प्राप्त करने और उसका खुलासा करने की साजिश के आपराधिक आरोपों में दोषी ठहराया जाएगा। विकिलीक्स ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि जेल में 5 साल से अधिक समय गुजारने के बाद लंदन की उच्च न्यायालय ने असांजे को जमानत दे दी है। अमरीकी न्याय विभाग के साथ एक अस्थायी समझौते में तय की गई शर्तों के अनुसार असांजे को अब अमरीकी हिरासत में नहीं बिताना होगा। शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक बीएसई सेंसेक्स आज 590 अंकों के उछाल के साथ 77,900 के स्तर से ऊपर पहुंच गया, जबकि निफ्टी 50 ने दोपहर के कारोबार के दौरान 140 अंक से अधिक की बढ़त के साथ 23,600 के स्तर पर एक नया शिखर दर्ज किया। पुरुषों के आईसीसी 2020 विश्व कप में सेंट विंसेंट के किंगस्टन में अफगानिस्तान ने बांग्लादेश को डकवर्थ लुईस पद्धति से 8 रन से हरा दिया। इस जीत के साथ अफगानिस्तान सेमीफाइनल में पहुंचने वाली चौथी टीम बन गई है। अफगानिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर पहले से ही उसे T20 विश्व कप से बाहर कर दिया है। सेमीफाइनल में पहुंचने वाली अन्य 3 टीम भारत, इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका है। मध्यम तेज गेंदबाज नवीन उल हक ने 4 विकेट लेकर अफगानिस्तान को जीत दिलाई। उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। अफगानिस्तान ने निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 115 रन बनाए। मैच बारिश के कारण 2 बार बाधित हुआ और लक्ष्य को 19 ओवर में 114 रन तक सीमित कर दिया गया। भारत का मुकाबला बृहस्पतिवार को सेमीफाइनल में गयाना में पिछली बार की चैंपियन इंग्लैंड से होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1975 में आपातकाल का विरोध करने वाले सभी लोगों का श्रद्धांजलि अर्पित की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ये दिन याद दिलाता है कि कैसे कांग्रेस पार्टी ने बुनियादी स्वतंत्रता को नष्ट कर दिया और देश के संविधान को कुचल दिया। उन्होंने कहा कि तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने सभी लोकतांत्रिक सिद्धांतों की अवहेलना की और देश को जेल बना दिया। उन्होंने कहा कि ये वही लोग हैं जिन्होंने अनेक मौकों पर अनुच्छेद 356 लगाया, प्रेस की स्वतंत्रता को नष्ट करने के लिए विधेयक लाए, संघवाद को नष्ट किया और संविधान के हर पहल का उल्लंघन किया। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।